ప్రాకృతనవద్బంధం పరం బ్రహ్మనరాకృతి సౌందర్యసార సర్వస్వం వందే నందాత్మజం ప్రపన్న పారిజాతాయ పుత్రవేత్రీ గోపాలయ జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం వంశీ విభూషితకరాండవనీరదావాత్ పీతాంబరాధరుణబింబఫలాధరోష్టాత్ పూర్ణేందుసుందరముఖారవిందనేత్రాత్ కృష్ణాత్ పరం కిమపి తత్తమహం న జానే హరి ఓం నమో సుపరమాత్మనే నమః శ్రీ గోవిందాయ నమో నమః శ్రీ గురు శరణ కమలేభ్యో నమః మహాత్మభ్యో నమః సర్వేభ్యో నమః. నారాయణ 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 నారాయణ. వర్తమాన మే శిక్షా కి బాత్ కహీ తో తభీ హో సకతే హై జో పఢానే వాలే అధ్యాపక ఔర్ పైసా రఖనే వాలే సజ్జన్ పైసా ఖర్చనే మే రుచి రఖే తో దోనో మిలే తో ఉస్కి బాత్ కా సుధార హో సకతా హై. नहीं तो पढ़ाने वाले हैं जो भी अगर ठीक फिर से विचार करें तत्परता से लग जाए तो हो जाएगा काम. हर काम में तत्परता से लगने की आवश्यकता है. हरिद्वार में वहां एक विद्यालय है जिसमें सुनता हूँ कि एक ब्राह्मण ने ये विचार किया कि विद्यालय करना है तो पानी पड़ा पाने के लिए एक क्षण बैठ गए और वो जल पाते थे और प्रेरणा करते थे करते करते वो विद्यालय हो गया. ऐसे ही गीता प्रेस को आप इतना बड़ा मानते हैं उनमें लगन केवल जयदयाल जी शेठ जी की थी. एक आदमी की लगन लगी. शेठ जी ने खुद ने कहा था कि गीता में आता है कि मेरा प्रचार करने वाले के समान कोई मेरा प्यारा नहीं है. तो मन में आया कि भगवान का प्यारा तभी हो सकता है जब गीता का प्रसार करें. शेठ जी ने खुद ने कहा था सभा में मैं बैठा था वहीं कि ऐसा प्यारा हो जाए गीता के प्रसार करने वाला बहुत प्यारा होता है. तो अपने गीता का प्रसार करना है ऐसा उनके विचार आया मन में. तो गीता पर खोल दिया एक याद वो एक आदमी हो गए. दूसरे भाई जी भी मिल गए और भी कई मिले उनका पता नहीं है. घनश्याम जी है सुखदेव जी है ऐसे कई सज्जन मिले. उनमें लेकर किया मैं खास मूल में एक ही आदमी भाई जी हनुमान प्रसाद जी. तो कई बार कहते थे कि मैं तो भजन ध्यान करूंगा एकांत जाकर के प्रेस का और काम करने का मन नहीं करता. सत्संग हो रहा था नाम भूल जाता हूं. इस वक्त तो यहाँ हरिद्वार का कुंभ था तो यहां सत्संग न करके वहां किया था सत्संग. तो उस सत्संग में भाई जी का पत्र आया था और भाई जी कपड़ा तलेर बांध कर बिना बांध वहां आ भी गए थे. क्या मेरा भजन करने का मन है एकांत रहने का मन है. तो उन्होंने पत्र व्यवहार में मैंने वो पत्र सुने. हनुमान प्रसाद जी ने लिखा कि प्रचार करना भगवान का काम है. मनुष्य क्या प्रचार कर सकता है मनुष्य कितनी शक्ति है क्या ताकत है ऐसा पत्र आया था. फिर भी आ भी गए भाई जी, कर्णवास की बात है, कर्णवास ना भूल गया भाई। तो कर्णवास में सत्संग हुआ था, तो उस समय गर्मी का सत्संग वहीं हुआ, जैसे ऋषि देश में होता है ऐसा ही वहीं हुआ उस समय कर्ष में। तो शेठ जी ने कोई पत्र लिखवाया था कि भगवान का भाव, भगवान के चरित्र, भगवान के प्रभाव का वर्णन करता, भगवान की गीता का प्रसार करना, ये काम भगवान का नहीं है, भगवान के भक्तों का है, इस वास्ते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। फिर इन्होंने पास एक गीता प्रेस भेज दिया, फिर कल्याण काम करते रहे। तो बात कहने का तात्पर्य था कि एक पुरुष के भी सच्ची लगन हो जाए तो काम हो जाता है। पहले पहले जो आचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, विष्णु स्वामी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, ये एक एक ही हुए, पर एक एक का विचार पक्का था तो उन्होंने कर लिया। अब जल जयकर ऐसी एक ही थे, एक ही। कितना गीता का प्रचार हुआ, कितना गीता पुस्तकों का प्रचार हुआ, कितना कल्याण का प्रचार हुआ, कितना सत्संग करना का प्रचार हुआ। तो एक आदमी भी दृढ़ता से लग जाए तो सहयोग ही दूसरे हो जाते हैं। जैसे कोई जय बोलता है तो साथ में जय दूसरे भी बोल देते हैं। ऐसे एक आदमी मुख्य हो जाए, जिसकी सच्ची लगन लग जाए, तो फिर दूसरों का सहयोग हो जाता है। अपने प्राण पर से ठीक से लग जाए तो इस तरह से एक एक आदमी से काम हो जाता है, सहयोग दूसरे देते हैं। इस तरह से दो चार आदमी हो जाए तो एक सहायक हो जाए, बढ़िया बात है। तो सहायता आदि मिलेगी उतना ठीक होगा। तो इसकी आवश्यकता है कम से कम एक पुरुष के भी जीवन देने की। हम बड़ पढ़ते थे उस समय, गीता प्रेस शुरू हो गया था, गीता प्रेस पहले मेरे मन में आई थी बात, पर गीता प्रेस शुरू हो गया था, उसमें हमने बने विद्या गुरु जी महाराज के सामने बात रखी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा अच्छा हो रहा है गीता प्रेस, तो किसी मनुष्य ने अपना जीवन दिया है, पहचान कुछ नहीं थी। हमारे महाराज ने कहा किसी ने जीवन दिया है, तो अपना जीवन दिए बिना काम नहीं होता, काम होता है जीवन पूरा दे देते हो, बहुत काम होता है, सहायता और से मिल जाती है, परंतु जीवन देना पड़ता है थोड़ा बहुत काम को। अल्लाह तो जीवन होता है, सच्चा प्रचार करके दे दे, अच्छा काम हो तो अच्छे काम में भगवान भी सहायता करते हैं, महात्मा सहायता करते हैं, शास्त्र सहायता करते हैं, सदगुरु सहायता करते हैं, जनता सहायता करती है, और चोर डाकू सहायता करते हैं। मानो अच्छे पुरुष, मध्यम पुरुष और नीचे पुरुष भी सहायक हो जाते हैं। पहले कुछ देशी और विरुद्धी होते हैं, वे विरुद्ध होने वाले भी ठीक हो जाते हैं। एक आदमी का दृढ़ व्यवसाय हो जाए कि हमें तो ये काम करना है, फिर कोई काम बाकी नहीं रहता। और शक्ति भगवान से मिलती है, गुरुजनों से मिलती है, संत महात्माओं से मिलती है, भगवान से मिलती है सहायता, सहयोग होता है। क्यों अच्छे काम में अच्छे अच्छे जितने पुरुष भी सहायक होते हैं। मैंने ऐसा व्याख्यान सुना है कि जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानना, विरुद्ध आचरण करना, वे भी काम कर देते हैं, तो उनका काम के दर्जे के साथ न शास्त्र करता, न भगवान करते, न महात्मा करते, न गुरुजन करते, न धर्म करता, तो वे भी अपना काम बना करके महान प्रचार कर रहे हैं, केवल करियुग ली सहायता के कारण से, अधर्म की सहायता, कलयुग की सहायता से। तो भगवान की सहायता से हम शुभ काम नहीं कर सकते क्या? कितने विलक्षण बात है। अरे जिनके पाप का आचरण करना, महान नाश करना, गायों का नाश करना, जीव जंतुओं का नाश करना, हत्या करना, महान हत्या करना, ऐसे ऐसे हत्या करने वाले भी अपना प्रचार कर रहे हैं, वो भगवान थोड़े सहायक है उनमें, संत महात्मा थोड़े सहायक है, गुरुजन थोड़े सहायक है, धर्म कोई सहायक थोड़ा ही है। एक कलयुगरी में सहायता है, कलयुग आया है वो कलयुग की सहायता, मेरी एक कलयुग की सहायता कर सकते हैं। तो कलयुग तो है भैया समय दिया हुआ है भगवान का, कलयुग में भगवान ने समय दिया, चारों युगों को समय दिया हुआ है, तो भगवान के दिए हुए समय वाला भी इतना काम कर सकता है, तो साक्षात भगवान का काम हम करें और भगवान हमारे साथ में, तो क्या असंभव हो सकता है। आस्तिकता पूरी हो भीतर में और अपना जीवन पूरा लगाया जाए तो शक्ति भगवान की आती है, उस तरफ से निमित्त मात्र कोई बन जाए उसको शक्ति आती है। तो हम बड़े भारी अच्छे ऊंचे पुरुष हो सकते हैं, हम नहीं तो दुनिया का बड़ा भला कर सकते हैं, दुनिया प्रसार कर सकते हैं। इस वास्ते मनुष्य को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत मत छाड़ो नरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धूका अटल धाम। 10 वर्ष गए थे ध्रुव जी, तो 5 वर्षों की अवस्था में भजन करते हुए धूका अटल धाम, आज ध्रुव जी कहलाते हैं, ध्रुव लोग हो गया। तो आदमी सच्चे तत्परता से, सच्चे दिल से तत्परता से लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर लगन भीतर की चाहिए, नकली कामों से नहीं बनता है। ऊपर से हम प्रचार करें हमारा नाम हो जाए ऐसा हो जाए, इसमें नहीं होता है। वृंदावन में ये रासलीला करने वाले लाडली शरण जी थे, अब होगा कि नहीं सभी उनका, उनकी रासलीला मैंने देखी है, बहुत वर्षों की बात है, कोई 60 वर्ष हो गया होगा अंदर में, पता नहीं पूरा। तो उनकी मैंने देखी जो लाडली शरण की अच्छी चलती थी रासलीला। तो अभी मैं वृंदावन था, 2-4 वर्ष हुए होंगे, उस समय वे आए पूछने के लिए, बूढ़े हो गए, अच्छी चलती थी। तो उनके आगे मेरे 2-3 प्रश्न है, बोलो। तो प्रश्न पूछा कि गायों की सहायता के लिए गोमत बंद करने के लिए आंदोलन किया और उसमें अनशन भी किए, साधु पुरुष भी लगे, अच्छे तरह लगे, फिर भी गोबंद नहीं हुआ, क्या कारण है, ये मेरे से पूछा। तो कारण तो भगवान जाने, हम क्या बताओ। मेरी समझ में आई वो बात कही कि जो लोग अगाड़ी होकर व्याख्यान देते हैं, प्रचार करते हैं, विशेषता से प्रगट में आते हैं, वे प्रगट में आते हैं उनके हृदय में सच्ची लगन नहीं है, और जो सच्ची लगन है वे प्रगट में आते नहीं है, और जिनके लगन सच्ची नहीं उनको श्रेय देना भगवान चाहते नहीं है, जिनको श्रेय देना चाहते हैं वो सामने आते नहीं है। पर ऐसों के हृदय में लगन है तो ये होगा कभी न कभी, परंतु वर्तमान में जो ये व्याख्यान दे रहे हल्ला ज्यादा कर रहे हैं उनको श्रेय देना चाहते नहीं भगवान, इस वजह से नहीं हो रहा है। मानो असलियत कम है नकलियत ज्यादा है, भजन स्मरण करने में हम लगते हैं परंतु भीतर से अच्छी लगन नहीं है, वो जो चाहिए वो लगन नहीं है। लगन ये बिना काम नहीं बनता है, नकली से काम नहीं बनता, नकली से नकली काम बनेगा, असली से असली काम बनेगा। तो असली भीतर की लगन होती हो तो क्या बड़ी बात है, सब काम हो जाता है, बहुत विचित्रता से होता है, परंतु साथ में एक दूसरे कोई कोई तरह की इच्छा दूसरी न हो, मान की इच्छा है, बड़ाई की इच्छा है, अपने को अच्छा मानने की इच्छा है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो ये अभिमान है सबसे ज्यादा खतरनाक ये चीज है। मैं बड़े घराने का हूँ, मैं बड़े वर्ण का हूँ, मैं बड़े आश्रम का हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा विरक्त हूँ, मैं बड़ा व्याख्यानदाता हूँ, इस किसी बात को लेकर जो ये हमको पोषण करना है ये महान बाधक है। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना, संस्कृति मूल संसार का तो मूल है यह हम, और नाना शूल तरह तरह की शूल देने वाला है, और सकल शोकदायक अभिमाना, संसार में जितने शोक चिंता भय उद्वेग होते हुए सकल शोकदायक अभिमाना है यह अभिमान। इस वास्ते भगवान को कहते हैं अभिमान देशितात दैन्य प्रियवाच, तो ऐसी एक गुत्थी है, अच्छा काम करने लगे तो अभिमान आ जाता है, अभिमान त्याग है तो उसने अच्छा काम करने की रुचि कम हो जाती है, लोग महिमा करे तो रुचि होती है, लोग निंदा करे तो रुचि नहीं रहती है। ये बाधा है, सबसे हृदय से लगने में ये बाधाएं हैं। ये बाधाएं होने से जो आप चाहते वो काम नहीं होता। तो ऐसी सच्ची शिक्षा का प्रचार हो उसके लिए कमर कस करके लगने की आवश्यकता है। वह लगने वाले कम वाले शक्ति कम है तो वो अपनी शक्ति मिलेगी, परंतु कलयुग का प्रभाव बड़ा जोर से हो रहा है। यद्यपि यह तो अभी संधि है, संधि होते हुए भी उनका जोर हो रहा है, क्यों दुराचारी दुर्गुणी आदमी वे अपना अपना प्रचार जोरों से कर रहे हैं। महान हत्या का विनाश करेगा, गायों के नाश करने का, हिंदुओं का नाश करने का, सज्जनों के नाश करने का बहुत जरा उपयोग हो रहा है, उद्योग हो रहा है। तो ऐसे उद्योग के समय में जरा कठिनता पड़ती है, परंतु हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, सच्ची लगन वाला काम कर लेता है और उसके सहायक भी मिल जाते हैं। और ये दूसरे विरुद्ध है, ये चुप भी हो जाते हैं, क्योंकि बल उनके पास पीछे का नहीं है। हमारे पास पीछे भगवान का बल है, शास्त्रों का बल है, धर्म का बल है, गुरुजनों का बल है, संत महात्माओं का बल है, इतना बल हमारे साथ है। पर निमित्त मात्र पहले बन करके हम आगाड़ी चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य ऐसा करना बहुत ही अच्छा बात है। परिस्थिति के सुलभ सबल हो सकते हैं, ये तो भारत में वनस्थली विद्या विहारों की आवश्यकता है, विद्यालयों की आवश्यकता तो है, परंतु ये सब कुछ हो जाएगा। गीता प्रेस में पहले सली गीता प्रेस उस समय विचार हुआ है एक गीता छापने का, इसका इतिहास मैंने सुना है। पूरा जानने वाले भी आदमी मिल जाएंगे, मैं पूरा नहीं जानता हूँ, परंतु ये बिल्कुल मैं सुनी जुटी बात पक्की है। कलकत्ता में वणिक प्रेस है, वणिक प्रेस, उस वणिक प्रेस में भगवत गीता सेठ जी ने लिखवाई, जो साधारण भाषा टीका के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें लेखक का नाम नहीं है। वे नाम नहीं चाहते थे, सेठ जी नाम बिल्कुल नहीं चाहते थे अपना, भगवान की गीता का नाम अपना क्यों हो, तो उनमें अभी तक नाम है, सेठ जी का नाम नहीं है। शेर जी ने वो लिखवाई थी, लिखाई तो उसको छपवाना है, तो वणिक प्रेस में छपवाई। छपवाई तो उसमें अशुद्धि आती है, वो शुद्ध करने के लिए कहते तो प्रेस वाले कहते कि इतने हम मशीन बंद रखे हैं, शुद्ध कर दे, इतने हमारा हर्जा बहुत होता है, हम इतना नहीं कर सकते, आप पहले शुद्ध कर दे दो, फिर शुद्ध नहीं कर सकेंगे। और उसमें छपने में आ जाए अशुद्धियां, वो शुद्ध करने बड़ी दिक्कत हुई। तो वे तो कहते हैं हमारे पैसा ज्यादा लगा, अरे खोटी होते हैं हम, और ये शुद्ध करने वाले समय तो लगेगा। ऐसी आफत आई, गीता पढ़ा, एक गीता छपाते छपाते धाप गए कि भी हम नहीं कर सकते। तब विचार किया कि एक मशीन अपने भी ले लो तो अपन छापेंगे, फिर चलावे न चलावे खुशी होगा, ऐसे एक मशीन ले लो गीता छापने के लिए, ऐसा विचार कर कौन करे। तो इस तरह से बाधा में तैयार हुई। महाप्रसाद महावीर जी, महावीर प्रसाद जी वो भी पोद्दारी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। घनश्याम जी ने कहा कि मैं ले लूंगा, तो मैं तो गोरखपुर रहता हूँ, तो अच्छा गोरखपुर में कर दो, तो अपने क्या बोले जहाँ रहे तो जहाँ करो। ऐसे कर एक मशीन ला करके और गीता छापना है, यही हुआ आरंभ। अब विचार करो गीता प्रेस कितना हो गया, तो वो ट्रस्ट बना गोविंद भवन ट्रस्ट, तो गोविंद भवन ट्रस्ट की शाखा है गीता प्रेस। गीता प्रेस मुख्य नहीं है, शाखा है, मगर शाखा इतनी बड़ी होगी जो मूल से भी ज्यादा होगी। तो ये मतलब इस वास्ते उदाहरण दिया कि पहले ऐसा विचार हो जाए ऐसा हम काम करना है तो फिर हो जाता है। भगवान की प्रेरणा होती है, उन्हें बल मिलता है भगवान से, तो काम हो जाता है। तो ऐसा आपका विचार हो जाए तो वन विहार भी हो जाएंगे, विद्यालय भी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। वो अपनी उम्र में हो जाए तो अपनी उम्र में ज्यादा आगाड़ी भी हो जाएंगे। सच्ची हृदय का लगाया हुआ पौधा वो बड़ा बढ़िया होता है। गीता प्रेस है तो गीता प्रेस में पुस्तकें पहले छपती थी, इसकी अपेक्षा शेठ जी के शरीर शांत होने पर पुस्तिका अधिक सपने लग गई। पहले शक्ति थी, उनसे ज्यादा शक्ति है, तो विचार के उपयोग उनके शरीर नहीं रहा, पर उनका जो विचार था वो महाराज चल रहा है। सच्चा विचार नित्य होता है, वो नाशवान नहीं होता है, तो वो अविनाशी विचार उनका पा है जो बढ़ रहा है। इस वर्ष ने सच्चा विचार होता किसी के तो वो फिर लग जाए तो हो जाता है, कोई असंभव बात तो है ही नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं, तो आप लग जाओ और दो चार आदमी और तैयार करो और वो कहो, कोई कहने वे लगे आप भी लगो, तो अपनी धुन ऐसी पक्की हो, कोई नहीं हो तो मैं तो करूंगा। देशम पादयामि कार्यम साधयामि, शरीर शर्म बन जाए सूख जाए पता नहीं, अपना तो काम करना है अच्छी तरह से, निष्काम भाव हो, अपने नाम की, अपने वर्ण की, अपने आश्रम की, अपने व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं, प्रशंसा नहीं लेना ही नहीं। गीता प्रेस वर्षों तक चलता रहा, हम पढ़ते भी रहे थे, थोड़ी थोड़ी पुस्तकें छपती थी, हम मांगते रहे। उस समय लेख आते थे कल्याण में, शेठ जी श्री जयदयाल जी के, ये कल्याण शुरू किया था कलकत्ता से, गीता छपी थी कलकत्ता में, दिया था बम्बई ने, कलकत्ता में बम्बई से, तो कल्याण शुरू बम्बई से हुआ था, एक दो वर्ष वहां चला। गीता छपी थी पहले वणिक प्रेस कलकत्ता में, ये दोनों मिलकर गीता प्रेस हुआ और ये छपरा इतना हो गया, वहां मामूली से शुरू किया काम। तो शुरू करने में तत्परता चाहिए, ये फिर भगवान के अनुकूल बात है, इसमें उनकी सहायता मिलती है तो उनसे काम हो जाता है, तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई असंभव बात नहीं। परंतु अपना अपने हृदय में अपने एक के आदमी की भी बात हो कि हमें तो ये करना है, चाहे जो ठीक हो सके ठीक हो, फिर सहायता मिल जाती है और भी शक्तियां जुट जाती है, साथ में हो जाता है। नारायण 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 नारायण। दूसरी बात आई है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन महान विपत्ति में भी भगवान की दया ही है, हमें पापों से मुक्त करके और शुद्ध करने के लिए ही भगवान ऐसा उद्योग करते हैं, इस विषय पर गौरव। तो बात ये सच्ची है, नारायण नारायण नारायण। खूब ध्यान देकर सुना, एक बात कहता हूं मैं, हमारे जो सामने सुख और दुख दो आते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता दो आती है, ये संसार का स्वरूप है, मात्र संसार का स्वरूप है कि सुख और दुख, दुख और सुख, सुख और दुख। जैसे दिन और रात, दिन और रात आते हैं, जैसे चरण में दया और माया पैर चलते हैं, ऐसे ही सुख दुख रूप संसार मात्र है, जिसमें सुखदायी परिस्थिति भी आती है, दुखदायी परिस्थिति भी आती है, और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का उपभोग करते हैं, सुखी और दुखी होते हैं। जो सुखी और दुखी होना है ये गलती है, खूब ध्यान दें आप लोग मेरी बात पर, गलती हमारी कहाँ होती है, कहते हम सुखी और दुखी हो जाते हैं, ये हमारी गलती होती है। सुख दुखदायी परिस्थिति अपनी उन्नति करने के लिए आती है, परमात्मा की तरफ तेजी से चलने के लिए आती है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं। ध्यान दें इस बात को, किसी में दुख आता है तो कहते भाई कर्मों का भोग है, भोगो तो दुख पा करके भोगते हैं। अच्छी परिस्थिति आती है भाई कर्मों का भोग है, मौज करो। तुझे दुखदायी परिस्थिति में दुख होना है, दो है बात इसमें, खास जानने की बात है जिसके लिए मैं प्रेरणा करता हूँ, वो खास बात यह है कि दुखदायी परिस्थिति दुख भोगने के लिए नहीं आती है, ये नई बात मालूम देगी कई भाइयों को, बहुत सुनने वालों को तो ठीक है, नहीं तो हरे को मालूम देगी कि तो नई बात है। प्रारब्ध का फल जो हमने शुभ काम किया है और अशुभ काम किया है, उन काम का जो फल मिलता है वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के रूप से, शुभ काम पुण्य आदि किए जाए सुखदायी परिस्थिति बनना, इसका ये नाम शुभ कर्म का फल है। और पाप कर्म के अन्याय किए उसका फल दुखदायी परिस्थिति बनना, ये फल है। बन आपको सुखी दुखी करना ये फल नहीं है, यहां भूल होती है। आप भाई संग लें, आपको शंका हो तो पूजा कर पूजा थे कर मेरे को पूछ लें, खूब बता सकता हूं मैं। मैंने कई बातें सुनी है, कई पढ़ी है। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति की आ जाना ये तो है कर्म का फल, और सुखी दुखी होना है अज्ञान का फल, मूर्खता का फल, बेसमझी का फल है। वो बेसमझी हम मिटा सकते हैं, परिस्थिति नहीं मिटा सकते। किसके बेटा मर गया तो उसको जिलाने अपने हाथ की थोड़ी बात है, धन चला गया तो धन हो जाए हमारे हाथ की बात नहीं है। परंतु बेटा मरने पर हम दुखी न हुए ये हाथ की बात है, धन चला दुखी न हुए हमारे हाथ की बात है। केवल मूर्खता से दुख पा रहे हैं, और मूर्खता का त्याग कर दे तो हर हाल में खुश रह सकते हैं। पूरे हैं मर्द वे ही जो हर हाल में खुश हैं, हर हाल में खुश रहते हैं मर्द है पूरे। मनुष्य शरीर का फल सुखी दुखी होना है ही नहीं। दुख भोगना हो तो नरक में जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है तो मनुष्य में आओ। तो सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुखी दुखी होना ये मूर्खता का फल है, अज्ञान का फल है, बेसमझी का फल है। उस मूर्खता को बेस अनुकूल परिस्थिति लाभदायक नहीं है उतनी, उपयोग दोनों का हो सकता है। आप अनुकूल परिस्थिति का उपयोग परमात्मा प्राप्ति में कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति का उपयोग परमात्मा प्राप्ति में कर सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दोनों साधन है, तत्व की प्राप्ति में साधन है। दोनों में देखा जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा सहायक है, ये विशेष सहायक है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, अंतकरण शुद्ध होता है और अगाड़ी सावधान होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी सावधान होता है, अनुकूल परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है। क्योंकि एक तो आपने सुने दिया कि प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्व के पापों का नाश होता है और अनुकूल परिस्थिति में पूर्व के पुण्यों का नाश होता है। तो हमारे पुण्यों का नाश होना चाहिए कि पापों का नाश होना चाहिए? पापों का नाश होना चाहिए। तो पुराने पापों का नाश होता है, सुई चुभा दो नींद उड़ जाएगी। इस तरह से प्रतिकूल प्रति सुई लगाने की तरह मनुष्य को जागृत करने की चीज है। तो इस प्रतिकूल परिस्थिति में संत महात्मा जितने हुए हैं उनमें प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में ही जागृति आई है, उसमें ही तत्परता से भगवान में लगे हैं। इतिहास में बहुत कम आदमी ऐसे जो अनुकूल परिस्थिति में भगवान की तरफ लगे हुए हैं, ऐसे कम मिलेंगे, ज्यादा यही मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में घबरा कर लगते हैं, तो वो परमात्मा में लगने के लिए आगाड़ी विकास के लिए अवसर मिलता है। और प्रतिकूल परिस्थिति में दूसरे सहायक कम मिलते हैं, दूसरे सहायक नहीं होने से भगवान की तरफ जाता है। अनुकूल परिस्थिति में कई अपने प्रेमी बन जाते हैं, सहायता करने वाले, तो भगवान की तरफ से रोक देते हैं वो, दूसरों की सहायता मिलते हैं, भरोसा रहता है जनता का दुनिया का। प्रतिकूल में पर सहायता दूसरी रहती नहीं, इस वास्ते केवल भगवान में होता है। संतों ने कहा है कि बोले न जानू को ये अल्प बुद्धि मन बेगते हैं, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। मेरे को स्तुति प्रार्थना करनी आती नहीं, बुद्धि कम है और मन का वेग ज्यादा है, परंतु नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं, बड़ों के भगवान है। जिसे कोई सहायक नहीं होता है, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, मैं जानता हूँ कि सहायक भगवान होते हैं। तो सुख में तो सहारा होता है दूसरों के, दुख में सहारा नहीं होते। प्रेम रखने वाले भी दुख पड़ता है जब किनारे हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो साथ नहीं देने से सजग आदमी होता है, उसके भगवान का भरोसा होता है। और जो सजग नहीं होता है वो रोता है, कई कई आशा करता है, तेरे तेरे सुख लेने की आशा करता है। सुख की आशा नहीं करनी, ना दुख री आशा ना सुख री आशा। जो परिस्थिति आ जाए उसी का उपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति करो। तो दुखदायी अवस्था में भगवान का भरोसा होता है, भगवान की तरफ चलता है। हाय मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है तो कौन है? ये भगवान है, भगवान की तरफ प्रीति जाती है। मैंने प्रयागदास जी की बात कही है, आपने सुनी होगा, मामा प्रयागदास जी। वो लड़का एक ही था, तो उसके मन में आया कि दूसरे छोरे हैं उनके, तो भाई है कोई, बहन है बड़े, मेरे को ना भाई है, मैं तो अकेले ही हूँ। लोगों ने चिढ़ाया उस बच्चों ने कि देखते ना भाई है ना बहन है, छोटे छोरा। वो कहते मेरी बहन है बड़ी, मेरे बड़ा भाई मेरे साथ में है, तेरे कोई नहीं है। ऐसे लोगों ने कहा तो रोने लग गया। टावर क्या कर रोने लग गया, रोकर माँ के पास गया कि माँ मेरे कोई नहीं है। तो माँ भी घबरा गई बेचारी, सच्ची बात ही, विधवा थी ब्राह्मणी और कोई साथ में था नहीं। तो जब वे ने ऐसी बात कही कि माँ मेरे कोई नहीं है, तो उसे कोई नहीं है क्यों भाई, तेरे सीता जी है, तेरे बहन है, मेरी बहन है, हाँ तेरे बहन है। जनकपुरी में रहने वाले सीता को अपनी बेटी मानते हैं बहुत से लोग, हमारी कन्या है, बहन है। वो कहाँ है? वो तो भाई अपने घर पर है। तो ये जो कोई मेरे नहीं है, ये हालत होती है आदमी के सन्मुख होने की। जैसे सीप होती है, उसमें बूंद पड़ती है वो मोती बन जाता है, पर वो सीप सन्मुख होती है ऐसे तब। तो सन्मुख दुख में भगवान के सन्मुख होता है आदमी, सुख में प्राय भूला रहता है। तो वो ऐसा हुआ था, उनकी बहन है, फिर महाराज मामा प्रयागदास जी संत हो गए, महात्मा हो गए। मेरी बहन है सीता, बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। ऐसा विचित्र हो गए, भक्त हो गए वो। तो ऐसे सब तरफ से सारा छूट कर भगवान की तरफ होता है। सब कर जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध पर डोरी। ये सब में जो ममता है वो तोड़ो, एक भगवान ममता करो। ममता मम पद गंज, केर मेरे में ही ममता हो। तो बहुत से निर्धन अवस्था में, दुख अवस्था में दूसरे स्वतः किनारे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं स्वाभाविक। फिर एक भगवान रहता है, और कौन है? सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, तो नेक श्रेयो नहीं काम, और निर्बल वैर बलराम पुकारो आयो आधे नाम। देर थोड़ी लगती है। द्रौपदी ने भी जब भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े धर्मात्मा बैठे, अंतर्दृष्टि रही तो द्रौपदी क्या दशा। सभा पर वो आप देखो, केस खेचा गया, गिरा दी गई, पकड़े घसीटी गए कुत्ते, मरे हुए कुत्ते को घसीटी जीव। सभा में जहाँ भीष्म जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा बैठे, ऐसी दशा करी उसकी, सब तरफ दृष्टि हटी। हे नाथ, हे नाथ, कितनी बात हुई। 10,000 गज बल घटियो, अरे घटियो 10 गज चीर, नख उगाड़ा नहीं कैसे, नख भी उगाड़ा नहीं कैसे का। तो सब तरह से वृत्ति हटती है तो भगवान में लगती है। तो ये दुखद अवस्था में होती है, ऐसी सुख अवस्था में नहीं होती है। इस वास्ते सुखदायी अवस्था है वो तो भ्रम कराने वाली, अटकाने वाली, गिराने वाली है, अभिमान पैदा करने वाली है। दुखदायी परिस्थिति है वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली चीज है। तो ये साधन दोनों सुखदायी हो तो क्या करो, कि सुखदायी सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं। अब ध्यान सुना, एक और बात बताता हूं। दुख दो तरह का और सुख दो तरह का। एक जिसके पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, बेटा पोता घर जमीन सब ठीक है, तो लोग कहते हैं बड़ा सुखी है। और एक पास ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए पूरा कपड़ा है, ना खाने के पेट भरने के लिए अन्न है, कोई साथी नहीं है, ऐसा है, तो वो कहते बड़ा दुखी है। एक तो सुख दुख की परिभाषा ये है, दूसरा चित्त का जन का चित्त प्रसन्न रहता है, मौज में रहता है, वो सुखी है, और जितने चिंता भय उद्वेग हलचल रहती है वो दुखी है। तो सामग्री के कारण से सुखी और सामग्री न होने से दुखी, और एक स्थिति में चिंता शोक आदि होने से दुखी, और एक स्थिति में मरा के पैरा घर मस्ती और भजन में लगा हुआ ये सुखी। तो भीतर का सुख दुख है ये तो अपने विवेक का फल है और अज्ञान का फल है, और बाहर के सुख दुखी है ये कर्मों का फल है। तो बाहर के सुख दुख नहीं है, वास्तव में भीतर के दुख है। तो अच्छे अच्छे धनी आदमी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े समझदार हृदय में जलते हैं, हृदय में आग लग रही है, ऊपर से लगे आप कहते हो सुखी है सुखी है, भीतर से पूछो पता लगे कैसे सुखी है, जल रहे हैं। और जो वास्तव में भगवान में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं, उन पुरुषों के पास में कुछ नहीं, सामग्री कुछ नहीं है, पर दुख है ही नहीं, मस्ती है। तो बाहर की सामग्री को सुख दुख देखने वाले बिल्कुल मूर्ख है, लंट है, समझते नहीं तत्व को। ये थोड़ी बड़ी अवस्था है, घटिया अवस्था है। बढ़िया अवस्था तो भगवान में लग जाए सत्य वो है, और संसार से बैराग हो जाए। अभी आपने सुना नहीं, सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्र, ये वृक्ष रूप सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्र ऋढ़ेण चित्वा। तो असंग शस्त्र क्या है? वैराग्य। वैराग्य से संसार कटता है, राग से संसार दृढ़ होता है। राग होता है जब अनुकूल दृष्टि मिलती है तो उसमें राजी हो जाते हैं, राग हो जाता है, और प्रतिकूल तो पर इसमें राग किसमें करेगा। फिर वैराग्य हो भीतर का, वैराग्य होता है बीच में सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या माए सर्वम वस्तु भया मित्रम भूमि निर्णाम वैराग्य में वा भयम। एक वैराग्य ही अभय करने वाला है। तो वैराग्य जब संपत्ति नष्ट होती तो वैराग्य स्वतः ही होता है, और वो स्वतः वैराग्य दामी नहीं होता, श्रेष्ठ दामी श्रेष्ठ वो होता है जो विचार दूरा वैराग्य होता है, भोगों के रहते हुए वैराग्य होता है, उनकी परवाह नहीं करता, वो वैराग्य तेजी का होता है। दुख पड़ने के बाद वैराग्य हो जाए तो दुख से वैराग्य है, वो वास्तव में वैराग्य नहीं है। कुत्ते को भी लाठी ले मारने को दौड़े तो भाग जाएगा, क्योंकि उसको वैराग्य हो गया। अब मार से वैराग्य सबको होता है, बड़ी बात थोड़ी है, वो वैराग्य वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो सुख सामग्री सब सब कुछ है, रुपए पैसे मान आदर सत्कार विद्वत्ता जो सुख सब कुछ है, मन सबको लात मार करके जाता है। तो दृढ़ वैराग्य होता है, वो बाहर की चीजों में राजी नहीं होता, और वैराग्य भीतर का है नहीं तो बाहर की चीजें मिलने में राजी हो जाता है। तो दुख पड़ने पर राजी होता है दुख के कारण, तो सुख आते ही भूल जाता है, और भीतर से वैराग्य होता है तो सुख आवे चाहे दुख हो पर वही नहीं करता, वो चलता है कि ये राग वैराग्य दोनों कल्पित ही बात है। सुखदायी परिस्थिति आ गई, दुखदायी परिस्थिति आ गई, फिर रहना है नहीं। तो भगवान कहते हैं यंग ही न प्यथयन्ते ते, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते। मात्रा ये दो श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तां स्थितेक्षस्व। बाहर के जो संयोग जितने हैं ये अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देते हैं, और आने जाने वाले होते हैं, इनको तुम सह लो, ना तो दुखदायी परिस्थिति में घबराओ और ना अनुकूल परिस्थिति में राजी हो। न प्रियम प्राप्य नोद विजित प्राप्य प्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ। तो अनुकूलता में राजी हो जाना ये गलती है, प्रतिकूल दुखी होना ये गलती है। तो सुखदायी परिस्थिति हो अपने पास धन धान, तो उसके द्वारा उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, अपने निर्वाह जितनी चीज तो है अपनी, अधिक अपने पास में है वो अपनी नहीं है, जितनी आप काम में लाओ उतनी है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है कि ये सन्यासी त्यागी होते हैं ना, वे बड़े ऊंचे होते हैं, चारों वर्ण चारों आश्रम स्त्रियां उसका धर्म वर्ण किया खूब नारद जी ने। तो युधिष्ठिर का एक भाव रहा, प्रश्न रहा कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वो सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकता है क्या? तो क्या कर सकता है? कब? यावत ब्रियेत दशरम तावत सत्वं ही देहिना। लाखा करोड़ा रुपया अपने पास सुख सामग्री रहते हुए भी जिसने पेट भर जाए इतना तो अन्न, और जितनी जगह सो जाए इतनी जगह, और जितना आवश्यक कपड़ा इतना, वो तो है उसका खुद का निर्वाह के लिए। अधिकं यो भी मन्य थे, अधिक को ज्यादा अपनी मानता है, सस्ते ना दंड मर रही, वो चोर है और उसे डंडा पड़ना चाहिए। नारजी कहते हैं अधिक को अपना मानता है, तुम्हारी तो तुम इतनी रोटी खाओ इतनी तुम्हारा है, कपड़ा पहनो इतनी तुम्हारा है, सोवो इतनी तुम्हारी जगह है, अधिक आपके पास में जगह है, अधिक कपड़ा है, अधिक सामग्री है, अधिक अन्न है, अधिक धन है, तो वो तुम्हारा नहीं है, उसको अपना मानना गलती है, वो दूसरों का हक है। तो जो अभावग्रस्त है उनका हक है ये। इस वास्ते लिखा है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए जब रसोई बन जाए उस समय कोई भिक्षुक आवे तो उस भिक्षु को रोटी दे दो, नहीं दो तो पाप लगेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, भिक्षुक कमाने में तो आया नहीं, साथ में खेती में साथ में आया नहीं, रसोई बनाने में साथ में आया नहीं, और रसोई तैयार हुई चट आ गया था, अब नहीं तो पाप लगे, ये कोई न्याय है? हमारी सहायता करते उनको न देते तब तो ठीक है, हमारी सहायता तो करी नहीं तो पाप क्यों लगता है? ब्रह्मचारी यतिष्ठैव पक्वान् न स्वामिना उभौ तयोरन्न मदत्वा च भुक्ता चांद्रायणम चरेत। सन्यासी त्यागी है, वो भिक्षा में आ जाए और उसको भिक्षा न दी जाए और भोजन कर ले तो चांद्रायण व्रत एक महीना का व्रत कवर तो प्रायश्चित होगा, इतना पाप लगता है। कि मुफ्त में कैसे लगे पाप? कि वो जो भिक्षुक है उसने संग्रह नहीं किया तो 100, 200, 500, 700 रुपया तो कर ही सकता था, वो उसने नहीं किया तो वो कहाँ रहा? आप में ही रहा, तो आवे तुम रोटी तो दे दो, उसकी चीज तो तुमने खा ली सब तरह से, और बगैर रोटी नहीं देते हो पाप लगेगा। वो क्या कुछ भी देखना अपने पास में, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। जैसे छोटे बच्चे की माँ चिंता करती है ऐसे वृद्ध भीतर से त्याग की उनकी चिंता भगवान करते हैं, तो उनको रोटी दे दो तो पाप लगता है। क्यों लगता है? कि वो संग्रह करते ही नहीं, अपने पास में उसे रखता ही नहीं, तो उसके निर्वाह की भगवान करते हैं, बड़ा भारी उसका असर होता है, सतह संसार वैराग्य होता है, भगवान में चलता है, तो असंग सत्रेण दृढ़ संसार का छेदन करके तथा पदम तत्परिवार के निवर्तन लौट कर नहीं आते, ऐसे पद की खोज करता है। तो ये खोज करने में संसार की आसक्ति का त्याग करने से, संसार की अनुकूलता का उपभोग न करने में है, त्याग में है। तो जितना अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो कर्म का फल है, परंतु उसमें त्याग करने से शांति मिलेगी, भोगने से शांति नहीं मिलेगी। तो असंग दृढ़ वैराग्य हो, राग नहीं है, सब चीजें रहते हुए भी जनक की तरह बिल्कुल निर्लेप है। जनक महाराज थे, उनकी एक बात सुनी मैंने, महाराज जनक के यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि कोई आवे तो उनके रोक टोक न करो, हमारे तक आने दो। उनको रात्रि में अपनी स्त्री के साथ सोए हुए थे तो एक ऋषि आएगा, मैं मिलना चाहता हूँ, हमारा जनक के मना नहीं है, कोई जाओ। पहुंचाए तो एक हाथ स्त्री के छाती पर था, और वो संत आए तो पास में शीत काल था, अंगीठी जल रही थी, और तो दूसरा हाथ अंगीठी में दे दिया। वो दौड़े और महाराज जल जाएगा उठाया, कहते महाराज अंगीठी में आप हाथ क्यों दे दिया, उठाया ही नहीं। कहते वो तो दिया स्त्री के लिए, ये दिया आपके लिए, भाई भोगी है ये तो आपके लिए अग्नि में रखा, हमारे अग्नि में रखो चाहे स्त्री में रखो, अवर्त फर्क है नहीं ना, हमारी दुनिया एक ही है। तो वो भोगी नहीं थे, योगी थे, बड़े बड़े सुखदेव जी शिक्षा लेने के लिए गए, तो ऐसा वैराग्य तेज का चाहिए जिसमें चिंता नहीं थी और नहीं, तो वो वैराग्य साधु के भी हो सकता है, गृहस्थ के भी हो सकता है, परंतु गृहस्थ के वैराग्य होना कठिन पड़ता है और साधु के वैराग्य सुगम पड़ता है। क्यों? आप अच्छा ही नहीं कोई, अब स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, उनको छोड़कर जाने में कठिनता पड़ती है, बाबा जी बनी बैठते ही नहीं, अब मर्जी आओ जहाँ जाओ, मर्जी आओ जहाँ जाओ, खुले होते हैं। तो साधु और वैराग्य नहीं हो तो धनुष नहीं उठा, उसने मैंने कहा है ना कि वो धनुष नहीं उठने से राजाओं की क्या दशा हुई, जिन विवेक विराग बिन सन्यासी, वैराग्य बिना सन्यासी की दशा वो राजाओं की दशा हुई, वैराग्य की दशा क्यों है ऐसी? तो राग तो मिटाना है, वैराग्य करना है, साधु के तो ऊपर से बाहर से दोनों वैराग्य होना चाहिए और गृहस्थों के भीतर से वैराग्य होना चाहिए, बाहर अपना गृहस्थ रहे जैसा रहे। त्यागी जो शोभा जगत में करता है सब कोई, अरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए, त्याग कर देते उसमें तो भाई पूछ नहीं रखते हैं ऐसा, तो उसके तो सभी प्रशंसा करेंगे, त्यागी सा नहीं रखते। तो त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी दुर्लभ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्यवान है उसकी पहचान कम होती है, लोग समझते नहीं गृहस्थ है क्या है, हमारे जैसे ही है, एक भीतर से वैराग्य कोई परवाह ही नहीं है। तो ऐसे भीतर से परवाह नहीं, ये वैराग्य गृहस्थ हो साधु हो सबको करना है, परंतु साधु हो जाए तो फिर तो वैराग्य ही करना है, अब गृहस्थ की तरह मकान थोड़े बनाना है, संग्रह थोड़ा ही करना है, विकास वही इकट्ठा करना है। बाबा जी हो गए, अब बाबा जी हो गए तो बाबा जी हो जाएंगे हमें सफाई, चलो सच्चे हृदय से हो जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। आज सुबह बताया था मैंने कि ये मनुष्य योनि कितनी ऊंचे दर्जे की है, भगवान ने मनुष्य को संसार के लिए नहीं बनाया है, उनके पाप पुण्य भुगताने के लिए नहीं बनाया है, भगवान ने अपने लिए बनाया, अपने लिए। तू तो मेरे को याद कर, मैं तेरे को याद करूं, तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी सेवा करूं, जैसे खेलने वाले आपस में अपनी जीत के लिए खेलते हैं, मगर राम जी भरत जी खेलते हैं, भरत जी के मन में राम जी जीते, राम जी के मन में भरत जीते, ये बात है। ऐसे श्री जी तो ये ऊंचा दर्जा है, तो ये कब होता है, कब अपने भोगने की इच्छा ही नहीं, अपने राग ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं, केवल दुनिया की सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है। तो मनुष्य जन्म भगवान ने इस वास्ते दिया कि तुम मेरे को याद करो, मैं तेरे को याद करूं। तो भगवान को अपना कहलाने वाला मनुष्य ही है और कोई नहीं कह सकता कि हे नाथ मेरे आप ही हो। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे पिता कोई नहीं, आप ही हो। ऐसा कौन मीराबाई कह सकती है, हरेक कह सकता है ऐसा, दूसरा न कोई, दूसरा माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, हमारे बहुत है। मीराबाई कहती है दूसरा न कोई, मेरे कोई नहीं है। ये अनन्य भाव, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य सत्य श्याम सुलभ, ऐसे अनन्य चित्त से करता है उसलिए मैं सुलभ हूँ। तो ये बात मनुष्य कर सकता है, मनुष्य भगवान को अपना कह सकता है और अपना होकर के रह सकता है, भगवान का होकर के रह सकता है और भगवान दूसरों को भी भगवान में लगा सकता है और भगवान भी राजी होते हैं उस पर, देख देख कर राजी होते हैं। भक्त को देख करके भगवान का आनंद बहुत आता है, जैसे भक्त को भगवान को देखकर भगवान की बात, भगवान का नाम, भगवान के गुण सुन करके आनंद आता है, ऐसे भक्त भगवान को भक्त के गुण सुन करके आनंद आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। एक दर्शन भगवान का मंदिर था, तो हरिहर बाबा वे गए उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो सामने गए जा रहे प्रहलाद 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 करते हुए गए। तो महाराज नृसिंह भगवान का मंदिर है कि नृसिंह भगवान के खुद के नाम लेने से इतने राजी नहीं होंगे जितने भक्त नाम से राजी होंगे। प्रहलाद प्रहलाद कर करते तो भगवान के नाम से भक्त राजी होता है, भक्त से भगवान राजी होते हैं। तो मनुष्य का निर्माण भगवान ने इसके लिए किया है, प्राप्ति का भोग नहीं है यहाँ, तो सुख दुखी नहीं होती, प्राग भोग योनि है ही नहीं, साधन योनि है ये, भोगियों ने तो पशु पक्षी आदि ये है, देव है, भूत प्रेत पिशाच ये है, भोगियों ने तो मनुष्य भोगे नहीं, ये मनुष्य होकर के भोगों में लग गए, बहुत बड़ी गलती करी है। ये तो केवल साधन योनि है, भगवान की तरफ चलना है, इसलिए ही मनुष्य में है। यही तनुकर फल विषय न भाई, अनुकूलता भोगना मनुष्य के शरीर का भोग नहीं है, ये मनुष्य मिला ही नहीं है। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग के लिए यज्ञ आगे करे तो स्वल्प अंत दुखदायी, ये तो दुख होगा। भोगी को दुख पाना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। जो सुख भोगता है उसको तो भोगना पड़ेगा ही, बच नहीं सकता कभी भी। इस वास्ते मनुष्य बने हो तो भगवान की तरफ चलो सच्चे वैराग्य से, तो वो सच्चा वैराग्य कराने की परिस्थिति दुखदायी में सुखपूर्वक वैराग्य होता है। तो दुखदायी परिस्थिति कृपा करते हैं भगवान भेजते हैं। भागवत में एक श्लोक लिखा है, अब घबराना नहीं, भागवत का है मेरा है नहीं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत तद्धनं शनैः, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन का नाश कर देता हूँ, और करूँ मैं बंधु विच्छेदम, भाई बंधुओं से अलग कर देता हूँ। वो दुख पुरुष जीता है और फिर भी मेरा भजन करता है तो मैं उनका हो जाता हूँ। क्या लगे संसार में फंसने वाली चीजों को अलग करता हूँ, सब तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, भाई बंधु मानते नहीं, मगर फिर भी मजल मेरा भजन करता है तो मैं दास हो जाता हूँ उसका। तो भगवान ऐसे करते हैं, पर सबको नहीं करते हैं, घबराना नहीं। वैद्य के यहाँ जाते हैं तो वो विरेचन देते हैं, दस्त लगाते हैं पहले, समझे, सबको नहीं लगाते, पेट में घनी खराबी होती है उनको जुलाब देते हैं। इस तरह से धन खराब होता है उनका धन नष्ट करते हैं, धन कहते हैं भजन ध्यान कर भगवान, बैर थोड़ा ही भगवान का, समझे, बद को दूर दूर कर देते। हरिष्य तन धनम शनि, करो भी बंधु विच्छेदम, कुछ दुष अलग कर दे, तुम सब दुख कह जीवती दुख पूर्ण जीता। ऐसे में भगवान को भजन करता था फिर तो भगवान ठाट बाश्रम बोझ कर देते हैं। तो दुखदायी परिस्थिति है वो उन्नति में बड़ी सहायक है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में बहुत राजी होना चाहिए कि वाह वाह प्रभु मैंने बड़ी भारी कृपा करी, आप मेरे को हृदय लगाना चाहते हैं, ये हम फंस जाते बहुत जगह, सब जगह छोड़ा करके अब एक मेरे लिए ही तुम आ जाओ, ऐसा आह्वान है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में घबरा जाते हैं, ये गलती है, घबराना नहीं चाहिए। बड़ी दृढ़ता से भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, मस्त हो गई, हरी कृपा मंगल हो गया, मंगल हो गया, भगवान की कृपा मंगल हो गया। बीकानेर में एक पुराने आदमी थे, वो ऐसे ही कहते मंगल हो गया, मौज हो गई, कोई मर गया मौज हो गई, धन चला गया मौज हो गई, बीमार आ गई कि मौज हो गई, कृपा हो गई भगवान की। ऐसे एक मंत्री की कथा आती है, राजा के एक मंत्री थे, थोड़ी सुन लेना भाई, थोड़ी थोड़ी मुसादे हो जाती है, तो वो यही कहते कि मौज हो गई, तो राजा की रानी मर गई, तो कभी रानी सामने की आनंद हो गया, राजू को बड़ा बुरा लगा। फिर बेटा मर गया तो क्या मौज हो गई, फिर वो सुपर एक बार कह दिया ठीक हो गया, भगवान की कृपा हो गई। दो घटा घटना की तीसरी, एक किसी ने तलवार लाकर देने की, बहुत बढ़िया तलवार है ये राजाओं के लायक है, तो म्यान से निकाल कर धार देखने लगे, ऐसे देखे तो कट कट गई, आंगली कट गई, पता ही नहीं लग रहा आंगली कट गई, अरे आंगली कट गई, तो बोला बारा मंगल हो गया, आनंद हो गया। तो राजा का गरीश पहली वो बात तो भिड़ी हुई ही, मर गई स्त्री, मर गई पुत्र, मर गया, दुख तो था ही भीतर, आंगली कट के मौज हो गई, निकल यहां से, अभी का अभी घर पर जाने की जरूरत नहीं है, जो कहते निकल जा, मेरे राज्य में अन्न नहीं ले सकता, तुम निकल यहां से, कहते मौज हो गई, आनंद हो गया, कृपा हो गई भगवान की, और निकल गया। राजा के राज्य में अन्न नहीं लिया। कुछ दिनों के बाद राजा एक दिन शिकार में गए, शिकार में गए तो घोड़ा तेज था, तो दूसरे घोड़े पीछे रह गए, एक घोड़ा शिकार के पीछे पीछे बड़े घने जंगल में चले गए, वहां डाकुओं का दल रहता था, डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, कहते तो अच्छा है, बड़ी सजाओ, अपने डाका डालते हैं तो काली भद्र माली के 32 हाथ डालेंगे, मनुष्य को 32 दांत होते हैं ना, हे माई तुम्हारे को हम 3500 ढाई गई ले गए, सब ले गए, वो स्नान वान कराया और माला पहराई, चंदन चढ़ाया और देवी के आगे खत्म कर दिया। तब पुरोहित ने पूछा, उनके भी पुरोहित होते हैं सब कहीं, पूछा कि तुम्हारी स्त्री है? कहते नहीं है। अरे आधा अंग आधा है, स्त्री हो तो पूरा है नहीं तो आधा है। तुम्हारे बेटा है? कहते नहीं, सब मर गया। कि हृदय जल गया इसका, ये तो ठीक नहीं है। तो बोले अरे बात बनाता हो, क्या पता है श्री वर्ष का, अंग देखा तो उंगली कटी हुई, अरे तो बिल्कुल कट, अंग भंग है, अंग भंग नहीं चढ़ता। आज तो अंग भंग करते हैं श्राद्ध तर्पण से चढ़ोगा नहीं महाराज, मारो तो सारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुख्य अंग थे काट दिया। मनुष्य पुरुष का तो पुरुष अंग काट दिया, स्त्री का स्त्री अंग काट दिया, संतान दोनों के नहीं हो तो महान पाप किया है। तो बड़ी के नहीं चढ़ेगी, उसे कहा ये तो देवी राजी नहीं होगी, अंग भंग है, अंग लंग, ये नहीं चढ़ता देवी के, तो वहां से निकाल नहीं लो यहां से। वो अपने घोड़े सर पर आ गया। अब घोड़े पर चढ़ाया तो उसने देखा कि मेरी स्त्री मरी तो राजी के मंगल हो गया, पुत्र मरा तो मंगल हो गया, आंकड़े भी मंगल हो गया, तो मैं तो ठीक ही हुआ। अगर आज ये नहीं मरे हुए तो मेरी तो मौत हो जाती, कि आधा अंग रह गया, हृदय जला हुआ है, आंगली कटी हुई है। तो मेरी तो ये बात है, पर मंत्री से मैंने कहा कि तुम निकल जाओ, उसे का बहुत आनंद हो गया, मंगल हो गया, कृपा हो गई भगवान, तो उसको बुलाओ, तो जब तक नहीं आ जाए दूध फल लेंगे वन नहीं खाएंगे, वो जब तक नहीं आएगा। तो राज की वो ढूंढ कर लाए, कि क्यों बुलाया आपने, कि आपने जो कहा था कि मंगल हो गया वो तो मेरे ठीक हो गया,